फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा टॉपिक और इस पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारी एक्सपर्ट। हमारे साथ है मिस अंशुल खरबंदा, शी इज एकेडमिक ऑफिस अकाउंटेंसी इन NIOS। मैम, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम सब जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की फॉर्म्स होती हैं। कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, कुछ कंपनीज इस्टेब्लिश करते हैं और कुछ लोग सिंगल हैंडेडली अपने बिजनेस को फॉलो करते हैं। तो एग्जैक्टली कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं और आज हम किस फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में बात करेंगे?
जी बिल्कुल, उससे भी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है और कैसे हम ये जो पांच तरह के जो फॉर्म्स होते हैं इनके, जैसा कि आपने भी बताया, उस तक पहुंचे, उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें कि कैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है।
जी,
जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लें, हम राइस मिल का अगर हम एग्जाम्पल लें, तो हम देखते हैं कि अगर राइस मिल चाहिए तो ओनर को पहले लैंड एक्वायर करने की जरूरत होती है। लैंड एक्वायर करने के बाद उन्हें बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी होती है, उसके बाद मशीन्स खरीदनी होती हैं और उनको इंस्टॉल करना होता है। इसके बाद उनको लेबर भी चाहिए, मशीन इंस्टॉल करने के बाद उन्हें लेबर भी चाहिए, उनको पैडी भी खरीदनी है और उसके बाद इस पैडी जो धान है इसको प्रोसेस करके राइस भी प्रोड्यूस करना है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि एक पूरा प्रोसेस है
जी,
जिसमें कि पैडी से राइस बनाने के लिए सारी रिसोर्सेस को असेंबल करने की जरूरत है, लैंड भी चाहिए, मशीनरी भी इंस्टॉल करनी है, लेबर को भी जगह पे लगाना है। तो जब हम इन सब रिसोर्सेस को एक जगह पे लगाते हैं, एक साथ लगाते हैं, जिससे कि हम पैडी से राइस प्रोड्यूस कर सकें, तो ये एक सिस्टमैटिक फॉर्म में होता है, एक प्रोसेस की तरह से होता है
जी।
तो इसी तरह किसी भी बिजनेस को करने के लिए या उनके बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए बिजनेस के बहुत सी रिसोर्सेज को लगाता है और कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो साथ में लगती हैं, जो कि बिजनेस को एक साथ जुटानी पड़ती हैं। तो इसको एक इस अरेंजमेंट को जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। जब हम सारी रिसोर्सेज जो भी हमारी हैं, जैसे हमने लैंड की बात करी, हमने प्लांट एंड मशीनरी की बात करी, हमने रॉ मटेरियल की बात करी या फिर हमने लेबर की बात करी, तो ह्यूमन रिसोर्स है, तो सब रिसोर्सेज को जब हम एक जगह पे एक साथ लगाते हैं तो इस जो अरेंजमेंट है इसको हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फिर हम सभी अपने आसपास देखते हैं कि हम सुनते भी हैं कि बिजनेस कर रहे हैं कोई ना कोई लोग, तो हम देखते हैं कुछ लोग अकेले बिजनेस कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं जहाँ बहुत से लोग हैं। तो हम देखते हैं कभी कभी तो बिजनेस कोई अकेले करता है या फिर कभी कभी साथ में दो तीन लोग मिलके करते हैं और कभी बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं। तो जिस तरह से लोग बिजनेस में उनकी ओनरशिप होती है
जी,
उस हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है।
okay.
या फिर ये भी सोचने की जरूरत है कि जो रिसोर्सेज बिजनेस में लग रही हैं या फिर जो कैपिटल लग रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कितने लोग उसमें इनपुट दे रहे हैं, कितने लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में कर रहे हैं। तो जो भी लोग बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर सोल प्रोप्रेटरशिप की हम बात करते हैं, जैसा कि जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, उससे पहले खैर मैं आपको एक बार पांच तरीके के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं वो बता दूं। तो है हमारा पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट है पार्टनरशिप, फिर है जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। लेकिन आज हम सिर्फ दो के ऊपर चर्चा करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर और पार्टनरशिप के ऊपर। तो जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो नाम से ही हमें पता लगता है सोल और प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब ही है सिंगल और प्रोप्राइटरशिप का जब हम मतलब देखते हैं तो वो है ओनरशिप। तो जहां पे सिंगल ओनरशिप होती है मतलब कि एक ही जना जो है वो बिजनेस को ओन कर रहा है
जी।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप से हम यही समझते हैं कि जब एक जना बिजनेस को ओन करता है, जब एक पर्सन उसको ओन करता है तो हम उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और भी इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले कहा कि सिंगल ओनरशिप होती है, तो जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में लग रही हैं वो सिंगल पर्सन ही उसको इन्वेस्ट करता है, मतलब जो भी बिजनेस में जो कैपिटल है उसको सिंगल पर्सन ही ला रहा है। फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो है नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो ओनर है वही सब कुछ मैनेज करता है, तो इसलिए ओनरशिप और मैनेजमेंट में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है। जो भी ओनर चाहता है वो डिसीजंस ले लेता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि एक ही पर्सन होता है, जब बहुत सारे लोग होंगे तो लीगल फॉर्मेलिटीज भी ज्यादा होंगी, क्योंकि हर बात के लिए हमें सबका डिसीजन लेना है, एक साथ डिसीजन लेना है, सबकी राय पता होनी चाहिए, सबकी रजामंदी होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों में लीगल प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब सोल प्रोप्रेटरशिप की हम बात करते हैं तो उतना लीगल प्रोसेस लंबा नहीं होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जो सोल प्रोप्रेटरशिप होती है उसमें और ओनर में फ़र्क नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि फ़र्क नहीं होता है, उसका मतलब है कि बिजनेसमैन जो है वो पूरी तरह से लायबल होता है, जो ओनर है वो पूरी तरह से लायबल होता है, और बिजनेस और ओनर जो है वो अलग नहीं होते। जब हम ये बात कहते हैं कि बिजनेस और ओनर सोल प्रोप्रेटरशिप में अलग नहीं होते, तो बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में कैसा होता है अभी हम आगे देखेंगे कि पार्टनरशिप के फॉर्म में किस तरह से होता है
जी।
फिर जो नेक्स्ट है वो है नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो प्रोप्राइटर है उसको किसी के साथ में भी प्रॉफिट और लॉस शेयर नहीं करना पड़ता है। प्रॉफिट होता है तभी भी पूरा का पूरा प्रोप्राइटर का शेयर होता है उसमें, और अगर लॉस होता है तब भी पूरा प्रोप्राइटर को ही बेयर करना पड़ता है
जी।
फिर जो नेक्स्ट है वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर किसी के भी क्लेम्स होंगे फर्म के ऊपर, तो जो ओनर है उसको ही पूरे के पूरे जो क्लेम्स हैं वो चुकाने होंगे।
ओके।
फिर जो नेक्स्ट है वो है वन मैन कंट्रोल। जो कंट्रोलिंग पावर होती है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, वो पूरी की पूरी सोल प्रोप्राइटर के पास में होती है। उनको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, तो एक तरह से प्रोसेस काफ़ी फ्लेक्सिबल और ईजी भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता है, डिसीजंस लेने में देरी नहीं होती है। और आगे हम और पढ़ेंगे कि इसके क्या मेरिट्स हैं और क्या डिसमेरिट्स हैं, तो उसमें और भी क्लियर होगा कि किस तरह से चीजें होती हैं। तो ये तो जो हम सोल प्रोप्रेटरशिप की बात कर रहे थे, ये तो सोल प्रोप्रेटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर इसके बाद हम मेरिट्स की बात करते हैं। तो जो मेरिट्स हैं, पहले तो है कि ईजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप, क्योंकि उसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए काफ़ी इजी होता है उसका फॉर्मेशन, और ज़्यादा लोग भी इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ एक ही जो ओनर है वही इन्वॉल्व है और वही सब कुछ है, उसे ही करना है, तो वो अपने विल के हिसाब से जल्दी से उसको फॉर्म भी कर सकते हैं और जब चाहें उसको वाइंड अप भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी के डिसीजन की या राय की ज़रूरत इसमें नहीं होती। फिर नेक्स्ट जो है वो है क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप ही होल एंड सोल है बिजनेस का, तो उन्हें वो सारे डिसीजंस खुद से ले पाते हैं और प्रॉम्प्टली एक्शन भी कर पाते हैं
जी।
फिर जो नेक्स्ट है वो है डायरेक्ट मोटिवेशन। जब हम डायरेक्ट मोटिवेशन की बात करते हैं, तो इससे मतलब है कि जो भी बिजनेस कर रहा है प्रोप्राइटर, वो जो भी अर्न कर रहा है उससे उसको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है। होता क्या है कि जैसे कंपनीज होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा भी प्रॉफिट हो, लेकिन जो इंडिविजुअल वर्कर्स होते हैं उनको उससे कोई डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं मिलता है
जी।
उनको ये भी पता है कि अगर प्रॉफिट मिलेगा भी तो वो भी शेयर्ड होगा, लेकिन क्योंकि इसमें सब कुछ सोल प्रोप्राइटर जो है उसी का ही होता है, तो उनको ये पता है कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, तो उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो
हाई
रहता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेले काम कर रहे हैं, तो उनके जो काम करने का तरीका है उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, कोई उसमें किसी की कोई मर्जी की उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो वो सारा काम खुद से कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट इसकी मेरिट्स की हम बात करें, तो जो नेक्स्ट मेरिट है वो है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। जैसा कि हम देखते हैं, अगर पार्टनर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो सीक्रेट्स भी बिजनेस के बाहर जाते हैं, बहुत सारे लोगों में पता चलते हैं
जी।
और जब कोई चीज़ बहुत सारे लोगों को पता होती है, तो फिर हम ट्रस्ट नहीं कर पाते कि कहाँ से बातें जो हैं वो लीक हो रही हैं
जी,
और सीक्रेसी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कम लोग होते हैं, कम क्या, यहाँ पे तो एक ही सिंगल पर्सन ही है, तो अगर वो कोई बात किसी को बाहर नहीं बताएंगे तो पूरी तरह से सीक्रेसी मेंटेन की जाए।
राइट।
फिर जो नेक्स्ट है वो है पर्सनल टच। सोल प्रोप्राइटरशिप है, सारा काम वो खुद ही देखते हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो पर्सनल टच पूरा रहता है। अगर वो एक शॉपकीपर भी हैं तो वो जो भी कस्टमर्स उनके पास आते हैं उनको अच्छी तरह से जानते होते हैं, एक कस्टमर रिलेशनशिप उनके साथ में मेंटेन करके रखते हैं, और इससे इस तरीके से उनका पूरा पर्सनल टच जो है वो बिजनेस में मेंटेन रहता है
जी।
तो ये मेरिट्स थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो हमने डिस्कस करे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ईजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप, फिर है क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन, नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन, फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स एंड पर्सनल टच। इसके बाद मेरिट्स के बाद हम थोड़ा सा लिमिटेशंस की भी बात करेंगे कि क्या लिमिटेशंस होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि सिंगल ओनर होता है तो वो जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ही बिजनेस का स्कोप रह जाता है। अगर जाहिर सी बात है बिजनेस तभी एक्सपैंड करेगा जब उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हो पाती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए बिजनेस का एक्सपेंशन भी थोड़ा मुश्किल होता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कई केसेस में ऐसा होता है कि अगर किसी भी रीज़न से अगर बिजनेसमैन काम को नहीं करना चाहता, आगे बिजनेस को नहीं करना चाहता, तो उसको वाइंड अप कर देता है, या मे बी कई बार अगर जो बिजनेस ओनर है उसकी डेथ हो जाए, या कुछ उसको ऐसी बीमारी हो जाए, या कुछ एक्सीडेंट हो जाए कि वो आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में बिजनेस एंड पे आ जाता है
जी।
तो ये एक इसका लिमिटेशन है। फिर जो नेक्स्ट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं होता है बिजनेस का और ओनर का, इसलिए जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। मतलब जो भी लॉ की अगर हम बात करें तो जो भी क्लेम्स होंगे वो पूरे के पूरे प्रोपराइटर को ही चुकाने पड़ते हैं
जी।
और इस केस में अगर कोई प्रोपराइटर की अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगी तो उसको भी यूज़ किया जा सकता है बिजनेस की जो ऑब्लिगेशंस हैं या डेट्स हैं उनको चुकाने के लिए, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी सीज किया जा सकता है
जी।
फिर जो नेक्स्ट है वो है नॉट सूटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। जैसा कि हम देखते हैं अगर कोई लार्ज स्केल ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें सिंगल मैनेजेरियल एबिलिटी अगर की कोई पर्सन है तो वो सूटेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि अब जब बिजनेस एक्सपैंड करेगा बहुत सारे उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं साथ में सब जुड़ेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको इस तरह से कंटिन्यू करना
जी।
फिर जो नेक्स्ट है वो है लिमिटेड मैनेजेरियल एक्सपीरियंस। जो एक जब हम लिमिटेड मैनेजेरियल एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उससे मतलब है कि जो भी कोई है साथ में कोई भी सिंगल पर्सन है वो हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। जैसे डिफरेंट फील्ड्स बिजनेस में होती हैं, जैसे परचेजिंग भी करनी है, सेलिंग है, बिल्कुल फाइनेंसिंग है, मार्केटिंग है, तो इसमें जो है बहुत सारे मैनेजेरियल स्किल्स एक पर्सन में नहीं हो सकते हैं। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास लिमिटेड होती हैं, इसलिए हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते कि हम हर एक चीज़ के लिए परचेजिंग के लिए हम अलग पर्सन को रख लें या एडवर्टाइजिंग के लिए अलग पर्सन को रख लें, तो इसलिए सब कुछ जो ओनर है उसी को करना होता है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आती है। तो इसलिए जो सोल प्रोपराइटर्स होते हैं वो सोल मैनेजर्स होते हैं, और ये एक उनकी हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी है या एक लिमिटेशन है कि उनको सब चीज की एक्सपर्टीज नहीं होती है
जी।
तो इसके बाद हम थोड़ा सा, ये तो हमारी बात थी लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप। इसके बाद सोल प्रोपराइटरशिप की सूटेबिलिटी किस जगह पे होती है हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो छोटे बिजनेस होते हैं ज़्यादातर सोल प्रोपराइटरशिप वहीं पे ही हम देखते हैं, जैसे कि कोई शॉप है, शॉप ओनर है। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर कोई शॉप ओनर है और उसने हेल्पर्स अपने पास में रखे हुए हैं तो वो सोल प्रोपराइटरशिप ही रहेगी, क्योंकि वो उनको पार्टनरशिप नहीं दे रहे हैं, वो उनके एम्प्लॉयज़ हैं एक तरह से, तो वो सोल प्रोपराइटर्स होते हैं। या फिर हम अपने घर के आसपास शॉप्स देखते हैं, छोटी शॉप्स हैं, कुछ डेयरी शॉप्स हैं, या कुछ ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, टेलरिंग शॉप्स होती हैं, तो इस तरह की जो भी शॉप्स होती हैं वो ज़्यादातर सोल प्रोपराइटरशिप होते हैं।
मैम, क्या ये एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है?
जी बिल्कुल पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। हम अपने घर के आसपास जो भी लोकल मार्केट्स देखते हैं वो सब सोल प्रोपरेटरशिप के ही उस पे चल रही हैं। हाँ, बहुत से होंगे जो जिसमें आपको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, मे बी नेक्स्ट पीसीपी में करेंगे
जी।
लेकिन बहुत सारे आप देखेंगे तो सोल प्रोपरेटरशिप होते हैं,
और इनके अकाउंट्स मेंटेन करने का तरीका भी डिफरेंट होता है।
इनका अकाउंट्स मेंटेन करने, क्योंकि अपना अकाउंटेंट कई बार रखते हैं और कई बार नहीं भी रखते हैं, क्योंकि इस चीज में इनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो। लेकिन अब आजकल हम देखते हैं जिस तरह से जीएसटी आ गया है, तो जो सोल प्रोपराइटरशिप वाले भी हैं उनको भी ये सब चीजें करनी पड़ती
है, फॉलो करनी पड़ती।
तो चाहे वो जीएसटी खुद से भरें या किसी अकाउंटेंट की हेल्प लें, वो बिल्कुल करना पड़ता है उनको ये सब चीज। तो हम देखते हैं जिसमें मैनुअल स्किल ज्यादा इन्वॉल्व है, जैसे हैंडीक्राफ्ट है या आर्टिशंस हैं, तो इन चीजों में भी सोल प्रोपराइटरशिप ज्यादा देखने में मिलती है
जी। मैम, अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में
जी। पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी इसका, कि जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसको हम नेम दे देते हैं गोपाल, और वो एक टेक्सटाइल फैक्ट्री सेटअप करने की सोच रहा है। टेक्सटाइल फैक्ट्री सेटअप करने के बाद गोपाल का फ्यूचर प्लान है कि कल को वो अपने कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने चाहेंगे, और जो भी कस्टमर की नीड्स होंगी उसको वो फुलफिल करना चाहेंगे। मतलब जिस भी तरह का वो कपड़ा मांगे, जिस भी तरह के वो कलर मांगे, वो सब वो उनको कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। लेकिन गोपाल को ये तो पता है कि वो टेक्सटाइल फैक्ट्री सेटअप कर लेंगे और उसके बाद अपने कस्टमर्स भी उनके आ जाएंगे, लेकिन कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना, जो डिफरेंट वराइटीज वो मांग रहे हैं उसको सेटिस्फाई करना, उसके लिए गोपाल को पता है कि वो काम ऐसे नहीं होगा, उसके साथ उन्हें और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए उनको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये जिस तरह का जो बिजनेस होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिल के बिजनेस करते हैं, ताकि कि वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं उनको प्रोड्यूस कर सकें और जो लोग हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकें, इस तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं या पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। तो जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं
जी।
वो मिल के मतलब अपनी फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज हैं उनको लेके आते हैं, और मैनेजेरियल एक्सपीरियंसेस भी उनके पास में होते हैं, क्योंकि डिफरेंट लोग होंगे तो डिफरेंट तरह के एक्सपीरियंसेस और एक्सपर्टीज होगी उनके पास में, और वो सब मिलकर अग्री करते हैं बिजनेस को आगे चलाने के लिए, और जो भी प्रॉफिट होता है उसको शेयर करने के लिए, और अगर लॉस होगा तो जाहिर सी बात है उसे भी शेयर करेंगे
जी।
तो ये जो लोग होते हैं जो मिल के एक पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं, लोग इंडिविजुअली मिलते हैं और फिर एक पार्टनरशिप फॉर्म होती है, इसको हम कलेक्टिवली फर्म कहते हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म कहते हैं
जी।
तो जिस तरह से हमने पहले सोल प्रोपराइटरशिप के बारे में जाना, पढ़ा, और उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी, लिमिटेशंस और मेरिट्स डिस्कस करें, उसी तरह से हम पार्टनरशिप फर्म में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे
जी।
तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है टू और मोर पर्सन पार्टनरशिप में होते हैं। अगर सिंगल पर्सन होगा तो फिर तो वो सोल प्रोपराइटरशिप हो जाएगी, लेकिन जो पार्टनरशिप है इसमें कम से कम दो लोग होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 होने चाहिए बैंकिंग बिजनेस के लिए, और 20 जो है वो दूसरे बिजनेस के लिए होने चाहिए। फिर जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है, मतलब पार्टनरशिप का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें कि ये मेंशन्ड रहता है कि किसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी और किस प्रोपोर्शन में वो अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को जो है वो शेयर करेंगे
जी।
फिर जो नेक्स्ट है वो है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड बिजनेस। तो ये वही है कि किस तरह से वो अपने लॉसेस को शेयर, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, क्या प्रोपोर्शन रहेगा। कई बार इक्वल रेशियो पार्टनरशिप होती है कि मान लीजिए अगर तीन पार्टनर्स हैं तो तीनों की जो शेयरिंग है वो इक्वल रहेगी, मतलब 50-50% रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर तीन लोग हैं तो 2:2:1 होता है, तो मे बी जो थर्ड पार्टनर है वो कम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करी है उसने, उसका इनपुट भी कम रहेगा
जी,
तो इसलिए उसका प्रॉफिट रेशियो भी कम रहता है। तो इसलिए जो भी पार्टनरशिप के टर्म्स होते हैं उनके हिसाब से जो भी इनका रेशियो शेयरिंग होता है उसको डिसाइड कर लिया जाता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है कि जो भी बिजनेस होगा पार्टनरशिप का, वो सब पर्सन उसको अग्री करना चाहिए और उनका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, इस तरह से एक लॉफुल बिजनेस हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक में भी ये चीज़ देखी थी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसी तरह जो पार्टनरशिप होती है उसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो भी पार्टनर्स होते हैं, जो भी उन्होंने जितना भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसी प्रोपोर्शन में उनकी लायबिलिटी भी होती है।
जी।
फिर जो नेक्स्ट है वो है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। तो जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, वो वॉलेंट्री होता है, लेकिन रिकमेंडेड होता है कि रजिस्ट्रेशन को करा लिया जाए ताकि कि कल को कुछ भी हो तो एक हम लॉफुल तरीके से उसको डील कर सकते हैं। अगर कोई भी मैटर हो, ऐसा अगर कोई भी मैटर हो, कोई डिस्प्यूट हो, कोई क्लेम एडजस्टमेंट्स हो, तो हम उनको उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। इसके बाद पार्टनरशिप के क्या मेरिट्स होते हैं, हम उन पर बात करेंगे।
जी।
तो सबसे पहला तो ये कि ईजी टू फॉर्म होती है, इसमें भी ज़्यादा कोई इतना काम नहीं होता है, ना ही उतना ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होता है। हाँ, सोल प्रोपराइटर के हिसाब से जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो ज़रूर होता है, लेकिन अभी जब आप बिजनेस के वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे कि उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कितना लंबा है, तो फिर आपको पता चलेगा कि पार्टनरशिप का तो उस हिसाब से बहुत ईजी है। और पार्टनरशिप का क्या प्रोसेस होता है ये भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे।
जी।
उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ लार्जर रिसोर्सेज। क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स साथ में आते हैं पार्टनरशिप करने के लिए, इसलिए रिसोर्सेज भी पूल करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं तो बहुत सारी रिसोर्सेज भी उनके साथ में आती हैं। रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज के फॉर्म में भी होती हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, हो सकता है वो कुछ और भी अपने साथ लाएं, या फिर कोई पार्टनर ये भी कह सकता है कि मेरे पास लैंड है, मैं अपना लैंड दे दूंगा, या कोई ये भी कह सकता है कि मेरे पास में ऑलरेडी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है या प्लांट एंड मशीनरी है। तो इस तरह से भी वो अपना रिसोर्सेज को पूल इन कर सकते हैं। और जो ये रिसोर्सेज हैं, ये तो फिजिकल रिसोर्सेज की बात हुई, इसके साथ में जो उनका मैनेजरियल एक्सपीरियंस होता है या एक्सपर्टीज होती है, जब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं तो हमारे पास ये चीज़ें भी उनके साथ में आती हैं, जो कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशन में भी पढ़ा था कि उनके पास इस तरह की एक्सपर्टीज नहीं होती, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली सब कुछ करते हैं। फिर जो नेक्स्ट मेरिट है वो है हमारी बेटर डिसीजंस। कई बार होता है कि जो सिंगल पर्सन होता है वो डिसीजन लेता है, तो कई बार जल्दी में आके हो सकता है या किसी के इन्फ्लुएंस में आके हो सकता है कुछ डिसीजन ले लें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो सब मिलके डिसीजन लेते हैं। माना कि उसमें चांसेस डिस्प्यूट के भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी डिसीजन बेटर होगा, हम ये मानते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जो पार्टनरशिप फर्म है ये फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। किसी भी टाइम जो है पार्टनर्स अगर चाहें तो, कोई एक पार्टनर अगर चाहे तो वो बिजनेस छोड़ सकता है, एक से ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, इससे जो बिजनेस का फ्लो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है शेयरिंग ऑफ रिस्क। जो भी बिजनेस का लॉस होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं उनको जो पार्टनर्स हैं वो आपस में शेयर करते हैं, जो भी उन्होंने रेशियो को अग्री किया है एग्रीमेंट में, जो भी डिसाइड हुआ था उसी रेशियो के हिसाब से वो प्रॉफिट्स एंड लॉस को शेयर करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कीन इंटरेस्ट। क्योंकि हम जानते हैं कि पार्टनरशिप में भी ये होता है कि जो लोग मिलके काम कर रहे हैं उन्हें पता है कि हमें प्रॉफिट्स भी शेयर करने हैं और हमें लॉसेस भी शेयर करने हैं, तो इसलिए उनका इंटरेस्ट होता है, उनका भी एक मोटिवेशन लेवल होता है कि हाँ हम सब मिलके काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, तो हमारा शेयर भी बढ़ेगा, तो इसलिए उनका बिजनेस में जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें जो हर एक पार्टनर के जो राइट्स होते हैं वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर पार्टनर जो है वो डिससेटिस्फाइड है किसी भी डिसीजन से, तो वो उसको मानने से इनकार कर सकते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए भी कह सकते हैं, या फिर आप खुद को पार्टनरशिप से विड्रॉ भी कर सकते हैं. तो कोई जबरदस्ती नहीं होता है, कोई बाइंडिंग नहीं होता उनके ऊपर कि उन्हें ये जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो फॉलो करने ही करने हैं. फिर जो नेक्स्ट मेरिट है वो है सीक्रेसी. जैसे हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कहा था, क्योंकि सिंगल पर्सन ही सब कुछ करता है तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है. पार्टनरशिप में भी कई हद तक सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि जो भी डिसीजंस होते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं उनके बीच में ही रहते हैं. मान लीजिए हमारे 4 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं और 10 पार्टनर्स भी हैं, तो उनके बीच में ही रहते हैं. लेकिन जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात में करते हैं तो उसमें सारे जो आपकी सीक्रेसी उतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि जो भी आपके डिसीजंस होते हैं वो सब बहुत सारे लोगों को आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं. जो शेयर होल्डर्स हैं, जो भी
क्रेडिटर्स
हैं या जो भी आउटसाइडर्स हैं, कई यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको उनको भी देनी पड़ती है. इसलिए आप सीक्रेसी उस लेवल तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं. फिर जो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप की. इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, फिर हमने मेरिट्स की बात करी, अब हम पार्टनरशिप की जो लिमिटेशंस हैं उसकी बात करेंगे. तो जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी. जैसा कि अगर फर्म का कभी भी डिसोल्यूशन होता है या किसी भी वजह से फर्म को वाइंड अप करना पड़ता है, तो जो भी क्लेम्स होंगे क्रेडिटर्स के, वो सब लोगों को जिस भी रेशियो में उन्होंने अग्री किया है, पार्टनरशिप फॉर्म करी है, उस रेशियो में उन्हें चुकाने पड़ेंगे. और मे बी इसके लिए चाहे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्यों ना यूटिलाइज हो, उन्हें वो भी देना पड़ता है. फिर जो नेक्स्ट है वो है अनसर्टेनिटी. वैसे तो अनसर्टेनिटी ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सोल प्रोप्रेटरशिप के हिसाब से जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है. लेकिन फिर भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता, क्योंकि कई बार होता है कि अगर आपस में पार्टनर्स में कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है या एक दो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, तो बाकी भी कई बार कहते हैं कि अब इसको बंद ही कर दिया जाए, अब करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इस तरह से कई बार होता है, हम देखते हैं होता है. तो इस तरह से हम कहते हैं कि पार्टनरशिप जो है वो इनस्टेबल है, लेकिन फिर भी अगर हम सोल प्रोप्रेटरशिप के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होती है. क्योंकि अगर एक आध लोग छोड़ भी देते हैं तो बाकी लोग अपना जो एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करके या जो अपना शेयरिंग रेशियो है उसको रिवाइज करके पार्टनरशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. फिर जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो है लिमिटेड कैपिटल. फिर अगर हम इसको कंपेयर करते हैं सोल प्रोप्रेटरशिप के हिसाब से, तो कैपिटल हमारा ज़्यादा होता है क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी कैपिटल जितने लोग हैं उन तक ही लिमिटेड रहता है. जिस तरह से कि हम कंपनी में फंड रेजिंग करते हैं उस तरह से हम इसमें नहीं कर पाते हैं. तो जो भी हमारे पार्टनर्स आते हैं, जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम उन पे ही डिपेंडेंट रह जाते हैं. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कैपिटल है पार्टनरशिप फर्म में वो लिमिटेड रहता है. फिर जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो है इसका नॉन ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर. जो भी किसी पार्टनर का इंटरेस्ट होता है वो किसी दूसरे को ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. उसके लिए अगर उन्हें करना भी हो तो फिर से पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करना पड़ता है और फिर से उसमें सब पार्टनर्स साइन करते हैं, जो सबके म्यूचुअल डिसीजन और एग्रीमेंट से ही होता है. अगर कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर चाहे कि मैं अपना इंटरेस्ट किसी और को दे दूँ तो वो ऐसा नहीं कर सकते. फिर जो नेक्स्ट लिमिटेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. जैसा कि हम सब जानते हैं, जब कोई सोल प्रोप्राइटर होता है तो उन्हें तो पता है सारे डिसीजन वो खुद ही ले सकते हैं और कोई उनके बिजनेस में हस्तक्षेप भी नहीं कर रहा है, कोई इंटरफियरेंस नहीं है, कोई उसमें बोल नहीं रहा है, तो वो एक इजीली फ्लो करता है. लेकिन जब पार्टनरशिप होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं, एक दूसरे की बातों में अग्री नहीं करते हैं, तो इस वजह से काफ़ी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं. तो इस लिए काफ़ी फ्रिक्शन भी हो सकता है और आपस में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाती हैं, जिससे पार्टनरशिप का एंड भी हो
जाता है.
जी बिल्कुल. तो ये हमारी पार्टनरशिप की लिमिटेशंस थी. उसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हम टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस करेंगे. पार्टनरशिप जो है वो कई तरीके के पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप में. जैसे कि अगर हम एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, किस एक्सटेंट तक लोग पार्टिसिपेट करते हैं पार्टनरशिप में, अगर हम उसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करें तो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं और स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं. एक्टिव पार्टनर्स वो होते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, जो बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम एक्टिव पार्टनर्स कहते हैं. और कई होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, उनको हम स्लीपिंग पार्टनर्स कहते हैं या फिर हम उन्हें डॉर्मेंट पार्टनर्स कहते हैं.
मतलब उन पार्टनर्स की लायबिलिटी पूरी रहती है बट उनकी एक्टिविटीज में वो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है.
जो ये पार्टनर्स होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर्स होते हैं, ये कैपिटल तो कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन, और जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उसमें भी शेयर करते हैं, बस इनका ये है कि जो काम है ये वो नहीं करते हैं. लेकिन जब लायबिलिटी की बात आती है तो हाँ ये लायबल होते हैं. फिर जो नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, किस तरह से प्रॉफिट्स शेयर करते हैं उसके बेसिस पे हम नॉमिनल पार्टनर्स और जो है जनरल पार्टनर्स के बेसिस पे इनको डिवाइड करते हैं. तो जो नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं वो फर्म को अलाउ करते हैं कि वो इनका नेम यूज़ कर लें एज पार्टनर. ये कोई कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करते और ना ही ये बिजनेस की जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं.
okay.
और इसीलिए इनको प्रॉफिट शेयरिंग में भी कोई हिस्सा जो है, इनकी हिस्सेदारी नहीं होती है. लेकिन बस ये है कि ये फर्म को अलाउ करते हैं कि इनका नेम एज अ पार्टनर वो यूज कर लेते हैं. फिर जो दूसरी तरीके के होते हैं, जो पर्सन जो प्रॉफिट जो है वो शेयर करते हैं बिजनेस विदाउट बीइंग लायबल फॉर लॉसेस, वो सिर्फ मतलब वो खाली जो प्रॉफिट्स होते हैं उसी के में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी में अपना हिस्सा लेते हैं, लेकिन लॉस में जो है वो पीछे हट जाते हैं, उनकी कोई उनको कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करना होता
जी.
इनको हम पार्टनर इन प्रॉफिट्स भी कहते हैं. फिर जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो बेस्ड ऑन लायबिलिटी के उसमें होती है. इनको भी हम जनरल पार्टनर्स भी कहते हैं और लिमिटेड पार्टनर्स भी कहते हैं. तो लिमिटेड पार्टनर्स वो होते हैं जिनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम. लेकिन जो जनरल पार्टनर्स होते हैं या फिर हम कह सकते हैं पार्टनर्स विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो होते हैं जिनकी पार्टनरशिप उनके एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक लिमिटेड नहीं रहती. उनकी पर्सनल जो बिलोंगिंग्स हैं उनको भी सीज किया जा सकता है, अगर कोई क्लेम्स हो फर्म के या कोई डेट हो तो उनको वो भी देना पड़ सकता है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वो होता है बिहेवियर, जो जिस तरह से पार्टनर्स का बिहेवियर है या जो कंडक्ट है उसके बेसिस पे होता है पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. तो जो पर्सन इस तरह से बिहेव करता है कि दूसरों को वो एक इम्प्रेशन देता है कि वो फर्म का पार्टनर है बट एक्चुअली वो फर्म का पार्टनर नहीं होता
है अग्रीमेंट में,
जी नहीं होता है, तो उसे हम पार्टनर बाय स्टॉपल कहते हैं.
ओके.
तो जो ऐसे पार्टनर होते हैं ये फर्म के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनमें इनका कोई शेयर नहीं होता है क्योंकि एक्चुअली ये पार्टनर्स होते ही नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दूसरों को इम्प्रेशन देते हैं कि हम फर्म के पार्टनर्स हैं.
पर ये लायबिलिटी में इनका शेयर हो जाता है?
जी नहीं, लायबिलिटी में भी इनका शेयर नहीं होता है
जी.
फिर जो नेक्स्ट है, जो पार्टनर है या पार्टनरशिप डिक्लेयर करती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन पार्टनर है फर्म का, लेकिन जो पर्सन है वो उसे क्लेम नहीं करता है, वो उसको डिस्क्लेम करता है कि मैं नहीं हूँ, तो उसको हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं.
ओके.
मतलब कि फर्म तो कह रही है कि ये पार्टनर है लेकिन जो पार्टनर है वो उसको मानने को तैयार नहीं होता है, तो इसको हम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हैं. तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स थे डिपेंडिंग अपॉन जो उनकी जिस तरह से उनका नेचर है, बिहेवियर है.
सो ये जितनी भी लॉ फर्म्स होती हैं, सीए फर्म्स होती हैं, सारी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं.
जी जी बिल्कुल, जो भी हमारी लॉ फर्म्स होती हैं जी वो बिल्कुल पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं. सीए फर्म्स डिपेंड करता है, कोई सीए फर्म हो भी सकती है जो पार्टनरशिप फर्म ना हो, वो इंडिविजुअली कोई कर रहे हो, लेकिन कई बार वो पार्टनरशिप फर्म होती हैं. और खासकर पार्टनरशिप जो है वो इसी तरह की जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वही इसको करते भी हैं, जैसे कि आपने लॉ फर्म्स की बात करी या फिर जो डॉक्टर्स हैं वो भी कई बार पार्टनरशिप में हम देखते हैं कि करते हैं कि जो डिफरेंट एक्सपर्टीज है उनकी, वो बहुत सारे लोग मिलके एक फर्म इस्टेब्लिश कर लेते हैं या एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं पार्टनरशिप में इस तरह से. फिर इसके बाद जो है हम पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे. तो पार्टनरशिप डीड होती क्या है पहले तो ये जानने की ज़रूरत है. डीड की जब हम बात करते हैं तो वो एक रिटन एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, एक रिटन एग्रीमेंट होता है कि वो बिजनेस को कैरी करेंगे और प्रॉफिट्स और जो लॉसेस हैं उनको शेयर करेंगे. और उसमें ये भी मेंशन होता है कि किस रेशियो में वो उन प्रॉफिट्स और लॉस को शेयर करेंगे.
जी,
जो ये पार्टनरशिप डीड होता है ये राइटिंग में होता है और उसको सब पार्टनर्स जो है वो साइन भी करते हैं. इसी के बाद उसको वैलिड माना जाता है. तो जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, ये भी जानना ज़रूरी है. सबसे पहले उसमें नेम ऑफ फर्म होता है, नेम ऑफ बिजनेस जो बिजनेस का नाम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप अगर डिसाइडेड है तो, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है, ड्यूटीज पावर्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टनर्स, सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ पार्टनर्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, जो डिसोल्यूशन का प्रोसीजर है वो मेंशन्ड होता है, और जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स का जो प्रोसीजर है वो भी उसमें मेंशन्ड होता है. तो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें ये सब चीज़ें मेंशन्ड होती हैं. हालांकि रिकमेंड किया जाता है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन है इट इज़ बाय लॉ इट इज़ नॉट मैंडेटरी.
ओके,
बट टू अवॉइड द consequences ऑफ एनी डिस्प्यूट इन फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड.
ऑलराइट,